उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के इस आज के नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं आज फिर हाजिर हूं कमल कुमार प्रजापति।
पूर्वोत्तर डायरी
एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की आपको झलक मिलती है। यहाँ के 8 राज्यों की कला संस्कृति और तमाम आयामों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। खासतौर पर जो हमारे संवाददाता मेहनत के साथ अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट हम तक पहुँचाते हैं उनको आप तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाते हैं और ये बताते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कुछ गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। श्रोताओं, बीते दिनों मकर संक्रांति का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति के साथ साथ पूरे देश में अलग अलग पर्व भी आयोजित किए गए। पूर्वोत्तर राज्य भी इस पर्व से अछूते नहीं है और पूर्वोत्तर राज्य तो वैसे भी कला और संस्कृति का समागम है, तो इन राज्यों में भी मकर संक्रांति के अवसर पर बड़े भव्य तरीके से पर्वों का आयोजन किया गया है और अलग अलग पर्व अलग अलग राज्यों में आयोजित किए गए। तो आज हम आपको अलग अलग राज्यों से विशेष तौर पर वहाँ क्या कला और संस्कृति का एक संगम देखने को मिला वो भी आपको सुनवाएंगे। जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक विशेष राज्य से करते हैं, तो आज भी हम आपको एक विशेष राज्य की सैर पर लिए चलते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपनी डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं और पूर्वोत्तर राज्य के एक खास राज्य की हम सैर पर आपको लिए चलते हैं।
आज हम चर्चा कर रहे हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में बसा एक समृद्ध संस्कृति और विविधता वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, विविधता और पर्यटन का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। आइए ले चलते हैं आपको सिक्किम की इस अद्भुत यात्रा पर। सिक्किम राज्य अलग अलग समुदायों, धर्मों और परंपराओं का संगम है। यहाँ मुख्य रूप से लेपचा, भूटिया और नेपाली समुदाय निवास करते हैं जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। लेपचा समुदाय, जिन्हें राज्य का मूल निवासी माना जाता है, प्रकृति पूजक रहे हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती मूल के हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि नेपाली समुदाय में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। लोसार जो तिब्बती नववर्ष है, लुसोंग, सागा दावा, फांग लैप्सोल, दशैन और तिहाड़ दिवाली यहाँ के दूसरे प्रमुख त्योहार हैं। इन उत्सवों के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करते हैं। सिक्किम में नेपाली, भूटिया, लेपचा, लिंबू, हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। नेपाली भाषा यहाँ की सबसे आम भाषा है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। इसके अलावा तिब्बती, शेरपा और अन्य स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित हैं, जो राज्य की भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। इस राज्य की हस्तशिल्प परंपरा समृद्ध और विविधताओं से भरी है। यहाँ के कारीगर ऊनी कालीन, चोकसी टेबल, थंका चित्रकला और बांस बेंत के उत्पादों के निर्माण में निपुण हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित कुटीर उद्योग संस्थान इन हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और इन्हें प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस राज्य का भोजन भी पारंपरिक है, जो नेपाली, तिब्बती और भूटानी व्यंजनों का मिश्रण है। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में मोमो, थुक्पा गुंडक, सिंकी, बांस शूट और किण्वित सोयाबीन से बने व्यंजन शामिल है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और स्थानीय लोग तोंगबा, जो कि बाजरा से बना एक पेय होता है, उसका भी भोजन में इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है, 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कंचनजंगा का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। सोमगो झील गंगटोक से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पूर्वी सिक्किम में स्थित अरितार इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ खांग चेंदोंगा का लुभावना दृश्य देखा जा सकता है। नाथुला दर्रा, भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। थुमथांग घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। सिक्किम की यात्रा के लिए मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और पर्यटक विभिन्न गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय भी उपयुक्त है। सिक्किम राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राज्य की जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। तो यदि आप सिक्किम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस समृद्ध राज्य को अपनी पर्यटन सूची में जरूर शामिल करें। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
तो मकर संक्रांति की श्रोताओं बात हो रही है, सबसे पहले हम आपको सिक्किम में मनाए जाने वाले एक ऐतिहासिक त्योहार के बारे में आपको बताते हैं। सिक्किम के ऐतिहासिक जोथांग माघे संक्रांति मेला 14 जनवरी से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है और माघे संक्रांति मेले में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की विशेष उपस्थिति रही। इस मेले में जो संस्कृति की छटा देखने को मिली, उसके बारे में अपने संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको सुनवा रहे हैं।
22 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में शुरुआती चरण में राज्यपाल माथुर और मुख्यमंत्री तामंग ने जोरथांग के त्रिकालेश्वर मंदिर में आयोजित माघी संक्रांति पूजा में भाग लिया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सिक्किम और सिक्किम के लोगों की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। माघी संक्रांति, जिसे मकर संक्रांति और माघी के नाम से भी जाना जाता है, सिक्किम का एक प्रमुख त्योहार है। यह माघ महीने के पहले दिन पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि श्रावण मास में माघी संक्रांति से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। माघी संक्रांति का त्योहार सिक्किम में विभिन्न नदियों और त्रिवेणी में स्नान करके, मंदिरों में पूजा करके तथा घी, तिल के लड्डू और कंदमूल खाकर मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान नदियों और घाटों पर स्नान, दान, श्राद्ध आदि करने के लिए बड़ी भीड़ एकत्र होती है। इस अवसर पर जोरथांग फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल माथुर ने माघी मेला 2025 की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की।
आई डिक्लेयर माघी संक्रांति मेला 2025 जोरथांग ओपन।
इसी तरह अतिथियों ने माघी मेला समारोह का ध्वज फहराया और शांति के प्रतीक कबूतरों का जोड़ा उड़ाया। इस वर्ष जनवरी माह में मनाए जाने वाला माघी संक्रांति मेला राज्य स्थापना दिवस के स्वर्ण जयंती के अवसर के रूप में भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस मेले में जीवंत संस्कृति और पारंपरिक विरासत के साथ साथ आधुनिक पहलों का मिश्रण है, जो राज्य की समृद्ध इतिहास पूरी तरह से दर्शाता है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने बताया कि कैसे माघी संक्रांति मेले की शुरुआत एक साधारण कार्यक्रम से हुई और अब यह राज्य का एक भव्य आयोजन बन गया है। उद्यमिता के, विशेषज्ञता के क्षेत्र के बारे में बात करते हुए राज्यपाल ने युवाओं के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और स्थानीय उद्यमियों को एक साथ लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयास की प्रशंसा की।
हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में मैंने काम किया है और उन प्रदेशों के कई उत्सवों में भी मुझे जाने का मौका मिला है, लेकिन मैं सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जब आज प्रगति के दौरान भगवान सूर्य दक्षिण से जब उत्तरायण की ओर जा रहे हैं, यानी एक नया कलेवर शुरू हो रहा है, और जिस प्रकार का आपने आयोजन किया है, खाली इस एक कार्यक्रम के माध्यम से आपने समाज जीवन के प्रत्येक अंग को जोड़ा है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो बेरोजगार युवा मेरे साथी हो, यानी सबका यह इन्वॉल्वमेंट किया है। मैंने इतने देश में पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार का कार्यक्रम मैंने मेरी नजरों से नहीं देखा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपार अपार बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के समाज जीवन के प्रत्येक अंग को जोड़ करके, और वास्तव में भगवान सूर्य के साथ संपूर्ण सिक्किम प्रदेश का प्रत्येक नागरिक दक्षिण से उत्तरायण की ओर जाए, और जैसे बार बार अनाउंसर कह रही थी कि सिक्किम हिंदुस्तान की आत्मा है, सिक्किम हिंदुस्तान का प्राण है, सिक्किम हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, तो आज आपने साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किया है। और इसके साथ ही मुझे जैसा प्यार हुआ है और बताया गया है कि अब तक के ये मेला, ये मगही मेला यहाँ का ऐतिहासिक मेला है, वर्षों से चलता आ रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आए, भिन्न भिन्न प्रकार का आयोजन किया, धीरे धीरे व्यापार की मंडी बनी, और आखिर में जो संतरा का आपने मुझे भेंट की है, मैं मानता हूँ कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में संतरा का भी एक बहुत बड़ी मंडी बनी है। और इसके साथ साथ यहाँ के लोकल उत्पादन, यहाँ के लोकल कारीगर जो पैदा करते हैं, ये जो हमारे पहाड़ में रहने वाले लोग जो एक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और इसके साथ साथ संपूर्ण देश भर से नहीं, विदेशों से भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ बुलाया गया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सिक्किम के नागरिकों की पहचान करके लगभग 500 स्टॉल पे मैं घूमा हूँ, और 500 स्टॉल में लोगों ने कहा है, जब मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि भाई आप सिक्किम क्यों आए, यहाँ क्या है, तो उन्होंने कहा सिक्किम के नागरिक बहुत अनुशासित है, सिक्किम के नागरिक बहुत अच्छे है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनकी पूरी दुनिया में मांग है। मुख्यमंत्री जी ने कहा तुम आओ मैं दूंगा, तो आपके सिक्किम की पहचान खाली सिक्किम हिंदुस्तान नहीं, अब यह सिक्किम की पहचान पूरी दुनिया में जा रही है, और इस मेलों के माध्यम से जा रही है। बंधुओं, वास्तव में जो कार्यक्रम देखा है, और आज जो मैंने अभी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपने संपूर्ण सिक्किम को एकत्र किया है, और ये लगता है कि हम सब एक है, और जब हम एक होते हैं, और जब एकजुट होकर के सिक्किम के विकास के लिए लगते हैं, जब एकजुट होकर के काम के लिए लगते हैं, तो उसका आनंद एक अलग होता है, हर एक की आत्मा जब उसमें जुड़ जाती है, मेरा सिक्किम हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी प्रदेश बने, ये भावना सिक्किम के सभी नागरिकों में पैदा हो, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और इस प्रकार के आयोजनों से मन मुटाव भी दूर होता है, इस प्रकार के आयोजनों से एक दूसरे को परखने का भी अवसर मिलता है, और ये वास्तव में उत्तरायण है, और वास्तव में आज तो तिल और गुड़ का अवसर है, और आज जो तिल और गुड़ आपने हमें खिलाया है, ये वास्तव में एक नई प्रेरणा देता है, एक नया उत्साह देता है।
राज्यपाल ने कहा कि सिक्किम में विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत का मिश्रण है, जो राज्य की विविधता में एकता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने सभी नागरिकों से एकता की इसी भावना को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने तथा आने वाले भविष्य में सिक्किम को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। मेले में विभिन्न समुदायों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन किए गए, जैसे कि धान नाच, मादल नृत्य और खुकुरी नृत्य शामिल किए गए। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल।
तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं मेघालय। मेघालय में एक विशेष आयोजन मेघालय सरकार की ओर से आयोजित किया गया था। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉमराड के संगमा की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित दो दिवसीय कैबिनेट रिट्रीट 11 जनवरी को चेरापूंजी के सोहरा में समाप्त हुआ, और इस रिट्रीट में कैबिनेट मंत्रियों ने भाग लिया, वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए, और उपायुक्तों ने भी इस मीट में भाग लिया था। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि ये कैबिनेट रिट्रीट हर साल आयोजित होगी। इस पहल का मकसद है कि सभी विभागों और जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उन सभी को एक मंच पर लाया जाए। दरअसल इस तरह के रिट्रीट का ये भी एक मकसद है कि मेघालय राज्य को 2032 तक एक समृद्ध राज्य बनाया जाए और विजन 2032 तक एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। तो विस्तार से हमारे मेघालय संवाददाता से ये रिपोर्ट सुनते हैं कि इस रिट्रीट में और क्या कुछ बातें सामने आई।
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित दो दिवसीय कैबिनेट रिट्रीट 11 जनवरी को सोहरा चेरापूंजी में संपन्न हुई। इस रिट्रीट में कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उपायुक्तों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये कैबिनेट रिट्रीट हर साल आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सभी विभागों को एक मंच पर लाना था, जहां सभी कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में राज्य के विकास के लिए विजन 2032 का रोड मैप तैयार किया जा सके। दो दिनों तक चली इस चर्चा को विभिन्न विषयगत सत्रों में विभाजित किया गया था। इन सत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य के विकास में आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीतियों को प्रस्तुत किया। इन सत्रों में सामाजिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विकास पर चर्चा की गई, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विभागों द्वारा पहचाने गए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक सरकार के बड़े लक्ष्यों का हिस्सा होंगे, जिन पर काम करके राज्य की चिंताओं को दूर किया जाएगा और विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस रिट्रीट में हुई चर्चाओं के आधार पर सरकार ने ऐसे हस्तक्षेपों की योजना बनाई है जो ठोस और लक्ष्य आधारित हों। इसका उद्देश्य मेघालय को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करना है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय और सहयोग के साथ काम करें। मुख्यमंत्री संगमा ने रिट्रीट के परिणामों को सकारात्मक और महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास राज्य सरकार के लिए आंखें खोलने वाला और फलदायी रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया से स्पष्ट, ठोस और प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों की आवश्यकता समझ में आई है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध और लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को नियमित क्षेत्रीय दौरे करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया। सरकार का उद्देश्य इस रिट्रीट के माध्यम से विभागों को जानकारी साझा करने और बेहतर समन्वय स्थापित करने का अवसर देना था। ये राज्य के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। शिलांग से पूर्वोत्तर डायरी के लिए लैम्प्रांग नोंगस्पुंग की रिपोर्ट के साथ विशाल शर्मा।
श्रोताओं, अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक विशेष आयोजन किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्वा एक्सीलेंस सेंटर के साथ मिलकर एक विशेष आयोजन किया, जो पश्चिम कामेंग जिले में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक छोटा अल्पकालिक प्रशिक्षण शुरू किया गया है, और इस प्रशिक्षण का मकसद है कि यहाँ के युवाओं को ऐसे कौशल सिखाए जाएं जिससे उनके आगे आने वाले समय में रोजगार के फायदे भी मिल सकें। तो आइए हमारे अरुणाचल संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं।
इस पहल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं को विशेष कौशल प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 1 से 2 महीने तक चलेगा, टूर गाइड, एडवेंचर ट्रेवल गाइड, कैंप हेल्पर और माउंटेन क्यूजिन शेफ जैसे पाठ्यक्रम प्रदान करता है। राज्य के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सचिव श्रीमती बोलू मामू ने कहा है कि विभाग पर्यटन के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना राज्य के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का एक नीतिगत दृष्टिकोण है, जिससे उन्हें एडवेंचर और इको टूरिज्म की बढ़ती संभावनाओं के अनुरूप कौशल मिल सके।
द मोटो इज टू स्किल इंडिया, जो एक स्किल इंडिया एक हम लोगों का विजन है, सो दैट इज द मोटो। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे अभी भी मैक्सिमम लेबर फोर्स आर अनस्किल्ड, तो स्किलिंग का एक बहुत ही इस बार दिस ईयर देयर्स लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इट, तो उसी को ही कंसिडर करके वी वांट टू स्किल आवर यूथ हियर, एंड दिस ओनली इज कंसिडर्ड अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव जब फाइनली इनको स्किल करके इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, खुद का लाइवलीहुड सस्टेनिंग करने के लिए एक वो दे आर केपेबल ऑफ दैट, ओनली देन इट इज ट्रूली अ सक्सेस. बस स्किल करने से दैट इज नॉट वेर आर जॉब एंड्स. सो द मोटो इज टू स्किल देम एंड टू गेट देम गेनफुली एम्प्लॉयड. That only then we can say that our Skill India program is a successful program.
यो कार्यक्रम टूर गाइड के लिए 2 महीने और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 1 महीने तक चलेगा, जिससे प्रतिभागियों के कौशल का व्यापक विकास सुनिश्चित किया जा सके. इस पहल से न केवल प्रतिभागियों को सशक्त बनाने की उम्मीद है, बल्कि यो राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा. पूर्वोत्तर दायरी के लिए राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर.
दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा में मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष उत्सवों का आयोजन किया गया. हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत वर्ष में संक्रांति का ये अवसर अलग अलग रूपों में मनाया जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस महोत्सव की बहुत धूम होती है. अलग अलग राज्यों में ये उत्सव अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है. इन उत्सवों से न केवल जहां एक तरफ धार्मिक बल्कि दूसरी तरफ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को भी देखा जाता है और सभी लोग मिलकर एक साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन उत्सवों को मनाते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य वैसे भी संस्कृति का एक बहुत बड़ा संगम है. तो यहाँ पर संस्कृति की, कला की एक छटा इन उत्सवों में देखने को मिलती है. तो आइए हमारे इन राज्यों के संवाददाताओं के विवरण को एक रिपोर्ट में हमने तैयार किया है, आपको सुनवाते हैं विस्तार से.
पूर्वोत्तर भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक परंपराओं और रंगीन उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ हर राज्य और जनजाति अपनी अनूठी परंपराओं और त्योहारों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करता है. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा में आयोजित उत्सवों ने न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को भी उजागर किया. अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित परशुराम कुंड मेला अपनी पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है. इस वर्ष 12 जनवरी से प्रारंभ हुआ 5 दिवसीय मेला 16 जनवरी को समाप्त हुआ. परशुराम कुंड हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है. मान्यता है कि महर्षि परशुराम ने प्रायश्चित करने के लिए हिमालय की यात्रा की थी. इसी दौरान जब उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया तो उनके हाथ से फंसा हुआ फरसा गिर गया और एक पवित्र जल स्त्रोत उत्पन्न हुआ. ये स्थल घने जंगलों और कामलांग अभयारण्य से घिरा हुआ है, जो प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाता है. इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटक परशुराम कुंड पहुँचे. उन्होंने पवित्र ब्रह्म कुंड में स्नान किया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया. मेले के दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें स्नान घाट, सुरक्षा प्रबंध और साफ सुथरे तीर्थ मार्ग शामिल थे. अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने मेले का उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि परशुराम कुंड क्षेत्र के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ का निवेश किया जाएगा. इससे न केवल इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है. यहाँ की 18 विभिन्न जनजातियाँ अपने अपने अनूठे त्योहारों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखती हैं. इन त्योहारों में नृत्य, संगीत, रंगीन परिधान और स्वादिष्ट भोजन प्रमुख आकर्षण होते हैं. सेक्रोनी नागालैंड की चाखे सांग जनजाति का प्रमुख त्योहार है. ये पर्व मुख्यतः कृतज्ञता और सामुदायिक एकता का प्रतीक है. सेक्रोनी के दौरान जनजाति के लोग अपने पूर्वजों, प्रकृति और देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. इस पर्व में सामूहिक भोज, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. हाल ही में नागालैंड में ये उत्सव बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले में गोमती नदी के तट पर आयोजित 3 दिवसीय तीर्थमुख मेला धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का अद्भुत उदाहरण है. ये मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ और 15 जनवरी को संपन्न हुआ. गोमती नदी के उद्गम स्थल तीर्थमुख को हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है. मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। माना जाता है कि यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थमुख मेला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट आयोजित होता है। वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल BSF ने मेले के दौरान सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए। BSF ने दुम्बोर झील में नावों से गश्त और सीमावर्ती इलाकों में पैदल व मोटर बाइक से निगरानी की। BSF के उपायुक्त श्री अनिल शर्मा ने बताया कि सुरक्षा प्रबंधों के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य संगठनों के साथ समन्वय किया गया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पूर्वोत्तर भारत की ये उत्सव न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। इन पर्वों के माध्यम से न केवल स्थानीय समुदाय अपनी परंपराओं को संरक्षित करते हैं बल्कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ये उत्सव यहाँ की विविधता, परंपराओं और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड मेला, नागालैंड का सैक्रोनी पर्व और त्रिपुरा का तीर्थमुख मेला इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि का प्रतीक है। इन त्योहारों के आयोजन से न केवल स्थानीय समुदायों में आपसी एकता और सौहार्द बढ़ता है बल्कि पूरे देश को भी इनकी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का अवसर मिलता है। त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाताओं के विवरण के साथ मैं वैष्णवी।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।